ओम शांति। संगम युग पर बाबा ने विशेष आप रत्नों को विशेष रूप से चुना है। भाग्यशाली आत्माएं जिन पर भगवान की नजर पड़ी है, विशेष जब हम अपनी बहनों को देखते हैं कि भाग्य विधाता ने कितना बड़ा भाग्य इन बहनों का बनाया है, साथ साथ हमें भी ड्रामा में ज्ञान रत्नों से खेलने का सौभाग्य मिला। लेकिन इस सौभाग्य का आधार, इस ब्राह्मण जीवन की उन्नति का आधार बाबा ने जो हमारी दैनिक दिनचर्या बनाई है, सुबह से लेकर जब से निर्गुण आना हुआ, हमने कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन बड़ा दिनचर्या, बड़ों की आज्ञा और बाबा की सिफारिश, कैसे पुरुषार्थ करना है, समय प्रसमय जो मिलती रही है उसी प्रमाण चलते आए। और हमने देखा है कि आज्ञाकारी बच्चों को परमात्म दुआएं अवश्य मिलती हैं। और यदि आप सबने गहराई से मुरलियों को पढ़ा होगा तो बाबा की पहली आज्ञा अमृत वेले के लिए विशेष रही है। हर मुरली में बाबा हमें अमृत वेले का महत्व सुनाते आ रहे हैं। बच्चे अगर वरदानों से अपनी झोली भरनी है, बाबा से ज्ञान रत्नों से स्वयं के खजानों को भरपूर करना है, तो परमात्म दुआएं प्राप्त करने का सबसे अच्छा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त का समय है। लौकिक रीति से भी आप सब ने देखा होगा, स्टडी में विशेष सवेरे के समय परीक्षाओं के समय पर स्टडी करते हैं तो स्मृति अच्छी रहती है। हम सबको बाबा ने शुरू से लेकर, मुझे याद है जब मैं 1971 में बाबा के घर में आया था, बहुत छोटा था, आप सबसे कम उम्र में मैं मधुबन में आया, 15 साल की उम्र में, लेकिन बाबा के घर को देखकर, यहाँ की दिनचर्या देखकर, शायद मैं कभी 8 बजे के पहले उठा नहीं था लौकिक में, लेकिन यहाँ की दिनचर्या ऐसी बनी हुई है जो न मन न चित अपने आप बाबा सवेरे उठा देता है। और पहले पहले शुरू शुरू में 4 बजे का योग नहीं था, साकार बाबा के समय था लेकिन बीच में बंद था। और वो सब जब शुरू हुआ, वो भी दिन मुझे याद है कैसे दीदी और दादी दोनों को अचानक बॉम्बे हॉस्पिटल में कुछ ट्रीटमेंट के लिए जाना हुआ और अव्यक्त बाबा का विशेष संदेश आया कि बच्चों को योगदान देना चाहिए और योगदान का सबसे अच्छा समय है अमृत वेला। साकार मुरलियों में आप सबने सुना होगा कि बाबा 2 बजे 2:30 बजे उठकर बच्चों को सकाश देते हैं, बच्चों को मदद करते हैं, करंट देते हैं जिससे बच्चे की बीमारी, बच्चों की तकलीफ दूर हो जाए। इसी प्रकार का संदेश हम सबको 72 में प्राप्त हुआ था जब दादी दीदी दोनों ही बॉम्बे में दवाई के लिए गई थी। और तब से ये एक नियम बन गया कि अमृत वेला प्रारंभ हो सुबह 4 बजे से 4:45 बजे तक हरेक को कंपलसरी योग करना है। कुछ एक आत्माएं इसमें अलबेली रहती हैं भी, लेकिन हमने देखा है कि जिनका ध्यान इस अमृत वेले के समय पर गया है, उन्होंने बहुत सहज रीति से अनेक वरदानों से अपनी झोली भर ली है। ब्रह्म मुहूर्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बाबा कहते हैं, बच्चे ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय है। जैसे ब्रह्मा बाप सृष्टि की रचना करता है, नई सृष्टि की रचना, ऐसे ही आप बच्चे सारे दिन की दिनचर्या की रचना करने के लिए सवेरे सवेरे उठकर विशेष तपस्या करो, योग में बैठो, बाबा से मीठी रूह रिहान करो। ये अव्यक्त पालना का सबसे अच्छी वेला, अच्छा मुहूर्त है। वैसे भी कोई श्रेष्ठ कार्य करना होता है तो वेला देखी जाती है, समय देखा जाता है, मुहूर्त निकलवाते हैं ब्राह्मणों से। बाबा ने हम सबको बहुत अच्छा मुहूर्त दिया है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, सब प्रकार की मेहनत से छुटकारा प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है अमृत वेला। अगर आप सभी इस बात पर विशेष अंडरलाइन करें कि बाबा ने इस समय को क्यों चुना है, ध्यान जाएगा कि सारी दुनिया जब इस समय नींद में होती है, वैसे भी सतोप्रधान समय है, थोड़ी सी आत्माएं जागृत होती हैं जो भक्ति पूजा पाठ क्रियाओं में लगती हैं, लेकिन बाकी विकारी आत्माएं उस समय सोई हुई रहती हैं। वाइब्रेशन का सहयोग, प्रकृति का सहयोग और बाबा की विशेष मदद, बाबा हमेशा ये बात हम बच्चों को कहते आ रहे हैं कि बच्चे अमृत वेले बाप भोलेनाथ के रूप में आप बच्चों के सामने होता है। आप उससे जो करवाना चाहो, जो कहलाना चाहो, जो आपकी फरियाद हो, जो आपकी आस हो, जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हो, अगर सवेरे सवेरे पहले मिलन में बाबा से बातें कर लो, रूह रियान कर लो, तो बाबा आपको सब शक्तियों से भरपूर कर देगा, सब प्राप्तियों को से संपन्न आत्मा हो जाएगी। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने की वेला, अव्यक्त पालना का अनुभव करने की वेला, परमात्मा वरदानों से अपनी झोली भरने की एक बहुत सुंदर वेला है। हमने अपने जीवन में अधिक समय जो सेवाओं में गया है, लेकिन सवेरे और शाम का समय जो अपनी उन्नति के लिए है, विशेष अगर हम एक घंटा भी सवेरे और एक घंटा शाम, जो नमाज शाम का समय है, इन दो समयों को अपने लिए रखते हैं तो अपनी अच्छी उन्नति की जा सकती है। कोई भी चीज की आपको रिसर्च करनी हो, कोई चीज में आपको मनन चिंतन करना हो, कोई टॉपिक पर आपको भाषण तैयार करना हो, आप सवेरे सवेरे एकांत में चले जाओ। आज भी बाबा ने कहा बच्चे सवेरे उठो और उठकर सैर करो, अगर नहीं सैर करते हो तो बैठ जाओ एकांत में, आपको बाबा बहुत अच्छी अच्छी नई नई प्रेरणाएं टच करेगा। तो अपनी बुद्धि को अगर हम बाबा हवाले करके, मन और बुद्धि को बाप हवाले करके, बाबा एक शब्द हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, अगर इस स्मृति से कि बाबा मैं जो हूँ जैसी हूँ जैसा हूँ आपका हूँ, आप जो कहना चाहते हो, जो बनाना चाहते हो, जैसा मेरा श्रृंगार करना चाहते हो, आपका पूरा अधिकार है। अगर इस विधि पूर्वक हम सभी अमृत वेले पर ध्यान देते हैं तो ये अमृत वेले का समय अपने आप को सारे दिन के लिए तैयार करने की फाउंडेशन वेला है। आप दिन में कितने श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो, उसका आधार, उसका फाउंडेशन अगर आपका श्रेष्ठ है, सवेरे सवेरे अगर अच्छे विचारों का भोजन आपने खा लिया है, आत्मा को शक्तिशाली बना लिया है, तो आपका सारा दिन इतना निर्विघ्न जाएगा, कैसी भी बातें आए, कैसी भी माया आए, हिलाने वाली बातें आ जाएं, लेकिन शक्ति संपन्न आत्मा जिसने सवेरे सवेरे बाबा से वरदानों से झोली भरी है, उसका सारा दिन निर्विघ्न हो जाता है। तो हम सभी जब से इस यज्ञ में आए हैं, अधिक बातों पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन सवेरे की पढ़ाई, अमृत वेले का योग और विशेष बीच बीच में जो ट्रैफिक के कंट्रोल के गीत बजते हैं उसमें योग, यही एक सहज पुरुषार्थ है जो हमारे मन और बुद्धि को बहुत स्वच्छ बनाए रखता है, व्यर्थ से किनारा कर देता है और बीच बीच में अपने आप आत्मा इस शरीर से डिटैच होने का अनुभव करती है। आप सभी देखते होंगे जब सवेरे आंख खुलती है, कईयों का अभ्यास नहीं होता, उठ तो जाते हैं, नियम प्रमाण संयम जैसे बने हुए हैं, नियम हैं, उठकर बैठ भी जाते हैं, लेकिन थोड़े समय में ही आलस से घेराव डाल देता है, नींद आने लगती है। कई बार रात को अच्छी नींद नहीं होती, भोजन अधिक कर लिया तभी भी आलस्य आता है। कुछ बातों का ध्यान जो हम अपनी दिनचर्या पर रखते हैं अमृत वेले को श्रेष्ठ बनाने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय में आत्मा को खुशियों से भरपूर करने के लिए कुछ बातों का ध्यान मैं आपकी ओर खिंचवाना चाहता हूं। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, सवेरे उठकर बैठ गए और ये चिंतन जो योग की हमारी प्रक्रिया बनी हुई है, हम सभी को कहते हैं आप शांत स्वरूप हैं, पवित्र स्वरूप हैं, आप इस भ्रकुटी के बीच में स्थित एक चैतन्य आत्मा हैं, और ये कमेंट्री अगर हम सवेरे सवेरे देते हैं तो धीरे धीरे संकल्पों की गति शांत होते होते और वो निद्रा का प्रभाव अपने प्रभाव में ले आता है। क्या करें, कौन सी विधि अपनाएं जिससे इतनी खुशी का अंदर अनुभव हो, इतने उमंग का अनुभव हो, जो नींद का नाम निशान भी न रहे, आलस्य समाप्त हो जाए, थकावट फील न हो, उसके लिए नॉलेज फुल की बहुत अच्छी स्टेज चाहिए। सारे दिन का प्रभाव अमृत वेले पर पड़ता है। जैसे अमृत वेले का प्रभाव हमारी दिनचर्या पर रहता है, ऐसे दिन में हम क्या सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं, किस प्रकार की स्टडी है, कितनी आत्मा को ज्ञान और योग की शक्ति प्राप्त होती है, उन सब का पूरी दिनचर्या का प्रभाव सवेरे के समय अमृत वेले के समय पड़ जाता है। जो बहुत स्थूल कारोबार में रहते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, अपनी स्वोन्नति का बैलेंस नहीं रहता है, बीच बीच में संकल्पों को कंट्रोल करने का या बाबा की मुरलियों का अध्ययन करने का जिन्हें अभ्यास नहीं है, बुद्धि में ज्ञान रतन नहीं टपकते हैं, ऐसी आत्माएं जब योग करती हैं, नियम प्रमाण बैठती हैं, तो समय पास करती हैं कि कैसे समय पूरा हो। बाबा ने कहा है आज्ञा पालन करनी है, लेकिन समय पूरा हो और जाएं बिस्तर में सो जाएं, आलस्य आता है। लेकिन अगर वो ज्ञान से भरपूर है, प्राप्तियों की अनुभूति है, उस समय के महत्व का इतना कदर है कि बाबा से जो चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारे लिए बाबा ने समय रखा है। बाद का समय भक्तों के लिए है, 5 बजे के बाद सब भक्त आत्माएं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपने देखा होगा अपने अपने मंदिरों में मस्जिदों में अपनी प्रार्थनाएं शुरू कर देते हैं, तो बाबा को उनके लिए तो समय देना ही पड़ता है। लेकिन उसके पहले का समय, अमृत वेले का समय 4 से 5 जो बाबा ने निश्चित किया है 4:45 तक, अगर हम सभी उस महत्व को जानकर ज्ञान चिंतन करते हुए, जैसे हम किसी स्थान पर योग करने के लिए आते हैं, अभी आपको यहाँ पर 10-15 दिन का समय मिलेगा, अगर इसमें अपने कमरे से यहां तक आने में कुछ अभ्यास आप कर लें, तो इस योग के बहुत अच्छे रस प्राप्त कर सकते हैं। और वो अभ्यास है जो बाबा कहता है कि आंख खुलते ही पहले संकल्प में बाप और बच्चे के रूप में मिलन बनाओ, बाबा गुड मॉर्निंग, आंख खुले और आंख खुलते ही बाबा सामने दिखाई दे, किस रूप में, बाप दादा भी हमारे सामने है लेकिन बिंदु भी सामने है, ज्योति बिंदु चमकता हुआ सितारा, एक भाग्य विधाता है और एक वरदाता है, भाग्य विधाता बाप भी कहता है, बच्चे मैं सवेरे सवेरे माँ के रूप में होता हूँ। ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ है और माँ के रूप में हम बच्चों के लिए क्या करता है, जैसे बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए माँ सवेरे सवेरे मक्खन निकालती है और पहले पहले बच्चों को खिलाती है, बच्चे सवेरे सवेरे मक्खन खा के तंदुरुस्त हो जाओ, शक्तिशाली बन जाओ, फिर भले कुछ करना। तो ब्रह्मा बाप माँ के रूप में हम बच्चों के प्रति इतना रहम दिल है, इतना उसका स्नेह का स्वरूप है। भाग्य विधाता भी है, जो आप चाहें अपने भाग्य की रेखा खिंचवा लें, जितनी लंबी चाहें बाबा कहता मैं खींच सकता हूं, सिर्फ आप बच्चे मेरे पास आ जाओ। कैसे आ जाओ, एक विधि बताता हूं। जैसे दीपावली पर हम सभी लक्ष्मी का आवाहन करते हैं भक्ति मार्ग में, तो भक्त लोग क्या करते हैं, एक स्वच्छता का महत्व रखते हैं और स्वच्छता के साथ साथ प्रकाश करते हैं, फिर आवाहन करते हैं। अंधेरे में नहीं आती लक्ष्मी। अगर अंदर कोई अंधेरा है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है, आत्मा प्रकाशित नहीं है, स्वच्छता नहीं है, उठ गए बिस्तर से और सीधे आकर के बैठ गए, स्वच्छ नहीं है, स्नान नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम फ्रेश होकर अच्छी तरह से स्वच्छ होकर फिर आकर अपने स्थान पर बैठ जाओ और दीपक जलाकर, आत्मा रूपी दीपक इतना प्रज्वलित हो कि मैं आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में चमक रही हूं और बाबा के प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। बहुत मीठी रूह रिहान भी है, वार्तालाप भी है बाप और बच्चे की तरह। बाबा आपने मुझे कितना महान भाग्य दिया है, कितना ऊंचा हमारा सम्मान बनाया है। अगर खुशी के नशे के संकल्प सवेरे सवेरे उठते हैं तो उदासी सुस्ती अलबेलापन अपने आप भाग जाता है। सिर्फ नियम प्रमाण आकर के नहीं बैठो, नहीं तो बाबा की बात मुझे बहुत हंसी की याद है। कई बार आप लोगों ने शायद सुनी हो, बाबा हठयोग का एक म्यूजियम जो जयपुर में बना हुआ है मिसाल देता है, और इसी पर मिसाल देता है कि अमृत वेले बच्चे मेरे योग कैसे करते हैं। हठयोगियों का एक म्यूजियम है, कोई एक टांग पर खड़ा होता है, कोई पैर ऊपर, कोई हाथ ऊपर, और भिन्न भिन्न पोज उसमें दिखाए हैं छोटे छोटे मॉडल्स में। तो बाबा भी कहता है मेरे बच्चों के बहुत वैरायटी पोज होते हैं, आ करके बैठ जाते हैं, लेकिन कोई किधर कोई किधर, कोई कैसा कोई कैसा, एक अलर्ट होकर के कि भगवान से मिलने में आत्मा जा रही हूँ, किससे मिलन है मेरा, आंख खुली है, मैं किससे मिलने जा रही हूँ, किससे बात करने जा रही हूँ, सवेरे सवेरे पहली पहली मुलाकात किससे है और उसे क्या मिलेगा। अगर खुशी से आत्मा को भरपूर कर लिया जाए और इतना ऊंचा सम्मान, पहले सम्मान में अपने आप को स्थित करो कि मैं किससे मिल रही हूँ, ये सबसे बड़ा सम्मान है कि भगवान मेरा डायरेक्ट बाप बन गया, भाग्य विधाता बाप बन गया, उसकी मैं बच्ची, उससे डायरेक्ट मिलने के लिए जा रही हूँ, उससे बातें कर रही हूँ और वो मेरे लिए इस समय हाजिर है, मेरे लिए उसका समय है, दूसरों के लिए नहीं है। तो ये एक सम्मान, ये नशा अंदर चढ़ता है तो आत्मा गदगद होने लगती है, खुशी में आ जाती है और फिर ये ज्योत प्रज्वलित हो जाती है अपने आप। जब भी योग में बैठो ये आसन कभी भी न भूल जाए कि मैं भ्रकुटी के आसन पर चमकती हुई ज्योति हूँ। इस आसन पर बैठते ही आप देखेंगे शरीर से मैं डिटैच हूँ और अंदर नशे के संकल्प, जैसे बाबा कहते हैं योग के लिए उड़ने के लिए जब प्लेन को उड़ाते हैं तो उसको डबल रिफाइन पेट्रोल देते हैं। अगर डबल रिफाइन न हो, पेट्रोल में जरा भी कहीं कीचड़ा हो किसी भी प्रकार का, तो प्लेन उड़ नहीं सकता है। इसलिए डबल रिफाइन पेट्रोल की जरूरत है। और हम सब अमृत वेले जब विशेष बैठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के समय, ब्रह्म लोक की सैर करने का समय है। नाम इसीलिए इसका पड़ा है कि ब्रह्म लोक का वातावरण है, ब्रह्म मुहूर्त है, माना ब्रह्म लोक के वातावरण की अनुभूति करनी है। कैसा है ब्रह्म लोक, क्या है वहां, क्या है वहां, लाल प्रकाश है और बिल्कुल साइलेंस है, जहाँ किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है। बाप और बच्चे का मिलन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो उस मिलन में बाबा अपनी शक्तियां किरणों के रूप में बच्चों पर बिखेरते हैं। अगर इस स्मृति से हम बैठते हैं तो एक ये अनुभूति है कि मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, उस बाबा से मिलने जा रही हूँ और बाबा मुझ आत्मा को सब शक्तियां प्रदान करेंगे। जैसे सवेरे आप लोग हमेशा श्रृंगार का महत्व माना गया है, सवेरे सवेरे का सब लोग स्नान करके स्वच्छ होकर श्रृंगार करते हैं। बाबा कहता बच्चे इन शक्तियों से, ज्ञान से, गुणों से, अपने अच्छे विचारों से अपना श्रृंगार कर लो। विचार कैसे अच्छे आएंगे? कई बार ऐसा होता है कि सवेरे सवेरे कोई अच्छे विचार भी नहीं आते, मतलब विचार नहीं आते, अच्छे और बुरे की बात नहीं, अधिक विचार नहीं चलते हैं क्योंकि सोए हुए होते हैं, नींद से उठते हैं। कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि कोई बात हो भी जाती है, कोई कह भी जाता है तो भी पता नहीं चलता क्या कह के गया है, ऐसा होता है ना। सवेरे उठे बैठे और कोई कुछ बोल भी गया तो भी याद नहीं रहता इसने क्या कहा था। शांत स्वरूप की अपने आप स्मृति होती है। तो उस समय अगर हम अच्छे विचार करके अपने आप को जागृत कर लेते हैं, खुशी के विचार, तो वो जागृत अवस्था बहुत कुछ अनुभूतियां कराती है। लेकिन जागृत तो आपको ही करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कोई सुबह सुबह आपको सुनाना शुरू कर देगा। सवेरे सवेरे तो आपको ही अपने अच्छे विचार देने होंगे। और अगर नहीं आते हैं, मान लो किसी कारण से नहीं आ रहे हैं, लगता है आज तो बहुत सुस्ती है, पता नहीं कैसा योग होगा, मजा आएगा या नहीं आएगा, तो सबसे अच्छी विधि जो हमने अपना कर देखी है, अपनी पर्सनल डायरी, जो नोटबुक हम लिखते हैं, कुछ ऐसी नोट्स, नशे की पॉइंट्स, सोमान की पॉइंट्स, या बाबा के वरदान जो इस समय मिलते हैं हम सबको रोज, एक बात पढ़ लो और पढ़ करके उस पर थोड़ी सी बुद्धि चलाओ। जिसकी बुद्धि एक बार चल गई, विचार आने लगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, एक के बाद एक पॉइंट ऐसे आएगी जैसे बाबा अपने आप टच कर रहा है। बाबा तो कहता है बच्चे मैं अनेक प्रेरणाएं उस समय देता हूं बच्चों को, लेकिन बच्चों की बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, इंगेज भी न हो, शांत भी न हो, डिस्टर्ब भी न हो। अगर हम सभी जागृत हैं, बुद्धि में अपने बहुत स्वच्छ विचार रमण कर रहे हैं, प्रभु मिलन के आनंदित विचार हैं, तो वो विचार बाबा तक भी पहुंचते हैं और बाबा के विचार हमारे विचारों से मेल खाते हैं। कई बार कहता है बाबा कि मैं बच्चों को टच करता हूं, लेकिन अगर कोई अपने भाव मिक्स करके बाबा के पास जाए तो क्या कहेगा वो कि बाबा ने आज ऐसी टचिंग दी। वो टचिंग यथार्थ होगी? कोई कहे कि मेरी आज बाबा ने सवेरे सवेरे मुझे ये प्रेरणा दी, लेकिन अगर उस प्रेरणा में, उस विचारों में जो आपको लग रहा है ये बाबा का विचार है, अपनी मनमत के भाव उसमें मिक्स हैं, तो उसमें सफलता नहीं हो सकती है, वो यथार्थ नहीं हो सकता है। आप उसकी चेकिंग कैसे करेंगे कि बाबा की टचिंग है या मेरी अपनी अंदर की भावनाएं हैं? क्या विधि है उसकी? है कोई विधि? जानते हैं कई बार ऐसे होता है कि आज बहुत अच्छा विचार मेरा आया, लेकिन ये बाबा ने कहा या मेरा विचार है, उसकी तराजू कौन सी है? सवेरे सवेरे अगर कोई बाबा की टचिंग होगी तो कोई ना कोई ऐसी पॉइंट मुरली के अंदर आएगी, क्लासेज में आएगी, वरदान में आएगी, स्लोगन में आएगी, जो आपके विचारों से टेली करती होगी, मिल रही होगी। और वो अगर मिलन हो रहा है, लग रहा है टचिंग है, और इस प्रमाण अगर हम चलेंगे तो सफलता अवश्य होगी। लेकिन सवेरे के महत्व को जितना हम अंडरलाइन करते हैं, बाबा से मिलने का समय है, भाग्य विधाता से भाग्य बनाने का ये समय है। बाबा तो यहां तक कहता है कि बच्चे अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसे पाप भी हुए हैं, भूलें भी हुई हैं, और उनसे उनके लिए तुम क्षमा चाहते हो तो मैं पाप बख्शने के लिए भी हाजिर हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत भोला रूप है, उस समय मैं भोले भगवान के रूप में हाजिर होता हूँ। लेकिन हम बच्चे कई बार अलबेले होकर के इस महत्व को इतना ध्यान नहीं देते हैं, किया तो योग कर लिया, नहीं किया तो छोड़ दिया। बाबा भी कहता फिर क्या करता हूं मैं, मैं तो चक्कर लगाता हूँ बच्चों के पास, मैं हर बच्चे के पास जाता हूँ, बच्चे किस तरह सोए हैं, किस तरह से योग कर रहे हैं, किस तरह से जगे हैं, वो बच्चे अनुभव करें, मैं तो हर एक के पास जाता हूँ। तो बाबा सवेरे सवेरे आप सब के पास रोज मिलने के लिए आएगा, इसलिए सवेरे आंख खुले, कुछ अच्छे ज्ञान के ऐसे संकल्प, सम्मान के ऐसे संकल्प अंदर क्रिएट करो पहले पहले, और क्रिएट करके नॉलेजफुल होकर, आंख बंद करके नहीं, ऐसे नहीं बैठ गए आकर के आंखें बंद कर ली। कईयों को आजकल अभ्यास हो गया है, हमने देखा है कि पहले पहले हमारे पास बहुत महत्व रखा जाता था दृष्टि का, आजकल दृष्टि का इतना महत्व नहीं है, उसके कई कारण है, वो तो हम क्लास नहीं करा रहे हैं, लेकिन हम अपनी योग की जो हमारी ओरिजिनल करने की प्रक्रिया है उसमें कई बार लूज हो जाते हैं, और भक्ति मार्ग की तरह जब आंख बंद करके योग करना शुरू करते हैं तो आंख बंद करने पर क्या होता है, नींद भी आती है और भी एक चीज होती है, झुटके आते हैं, एक रील चलती है। मान लो आपको नींद नहीं आ रही है तो जैसे कोई सिनेमा की या कोई रील चल रही हो पिक्चर की, तो जो बीतती बातें हैं, जो इधर की उधर की बातें हैं, जो पढ़ा है, जो किया है, जो सुना है, जो किसी ने सुनाया है, उसकी एक रील वो आंखों के सामने से गुजरने लगती है। ये अनुभव की बात मैं बताता हूँ। अगर आंख बंद किया तो, और दूसरी बात, अगर मान लो उसको आपने ब्रेक देने की कोशिश की, ये क्यों आता है, चलो बाबा से मिलने के लिए आया हूं, तो फिर धीरे धीरे शांत होते होते नींद आ जाएगी। इसलिए बैठने की विधि बहुत सिंपल, बहुत सरल है हमारी। एक तरफ खुशी का संकल्प है, उमंग का संकल्प है, डबल रिफाइन पेट्रोल माना, एक खुशी का, एक नशे का संकल्प, यही डबल रिफाइन पेट्रोल है और कुछ नहीं है। इतना खुशी कि मैं किससे मिलने के लिए जा रही हूं, मेरा प्रीतम कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा संबंध किससे है, और मुझे क्या प्राप्ति कराएगा, मेरे कितनी ऊंचे भाग्य बनाने के लिए भाग्य विधाता ने ये मेरे लिए समय दिया है, इतना ये वैल्यूबुल, इतना अमूल्य समय है, ये अमृत वेला है। अमृत किसको कहते हैं, जो अमर बना दे, हमारे जीवन को अमर बना दे। हम कहते हैं अगर इस ब्राह्मण जीवन में कोई अमर भाव का वरदान परमात्मा से लेना चाहता है तो अमृत वेला एक दिन भी मिस न करे। अमृत वेला जिसका इतना शक्तिशाली है और जिसने रोज अमृत वेले बाबा को प्यार से याद किया है, बाबा कहता है कि मेरे तीन प्रकार के बच्चे हैं योग करने वाले, सवेरे सवेरे योग जो करते हैं, तीन प्रकार के। एक हैं समय बिताने वाले, समय घड़ी देखते रहेंगे, 4:30 का रिकॉर्ड बज गया, 4:45 होने वाला है, अभी जाएंगे स्नान करेंगे, अभी ये करेंगे, अभी ये, और दिनचर्या बनाएंगे। बाबा कहता है ये है अपनी दिनचर्या सेट करने का ही समय, सेट कर लो तन की मन की पूरे दिन की दिनचर्या, कि मैं मन को किन किन विचारों में रखूंगी, किन मर्यादाओं के अंदर रखूंगी, कौन से संकल्प आज मुझे करने हैं, कौन से अच्छे कार्य करने हैं, कहाँ कहाँ अपनी बुद्धि को लगाना है, सेट कर सकते हो अपनी दिनचर्या को। लेकिन हम कई बार ऐसे ऐसे संकल्प कर लेते हैं कि समय पास करने वाले संकल्प, ये योग का समय है 4:15, 4:15, 4:30 देखते रहेंगे और सफेद लाइट हुई और भागे। उस आनंद का अनुभव, उस रस का अनुभव, प्रभु मिलन का अनुभव, ऐसे उठे जैसे लगे कि भरपूर होकर के उठ रहे हैं। जैसे क्लास से जब कोई उठता है तो लगता है कि मुझे कुछ बहुत अच्छी बातें मिली हैं आज क्लास में, तो उसकी चर्चा करेंगे, उसका अंदर अंदर सुमिरन करेंगे, उसे नोट्स लेंगे। ऐसे ही बाबा से मिलने के बाद ऐसी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी प्रेरणाएं बाबा देता है, अगर जाकर के बैठ जाओ उनको लिख लो 10 मिनट में 5 मिनट में जो अच्छे विचार आए, तो आपका सारे दिन के लिए क्या, सारे जीवन के लिए वो खजाना बन जाएगा। तो एक है बाबा कहता समय पास करने वाले बच्चे, और दूसरे हैं संयम प्रमाण, नियम प्रमाण, भाई बाबा ने कहा है, बाबा की आज्ञा है, चलो, नहीं तो हमारी हाजिरी में नंबर कम हो जाएंगे, बहन जी क्या कहेंगी, हम तो ट्रेनिंग के लिए आए हैं, कई प्रश्न ऐसे होते हैं ना, तो फिर संयम बने हुए नियम, आ गए बैठ गए। और तीसरे हैं स्नेही, स्नेही बच्चे। तो एक है समय व्यतीत करने वाले, एक है संयम निभाने वाले, और तीसरे हैं स्नेह से बाबा से बातें करके अपने आप को सब शक्तियों से, सब खजानों से, सब गुणों से भरपूर करने वाले। एक एक गुण का मैं कहता हूं, अगर आप अधिक चिंतन नहीं कर सकते हो, 7 दिन के लिए 7 बातें मैं बता देता हूं चिंतन कर लेना, सवेरे सवेरे। वैसे तो बहुत सारी चिंतन की बातें आपको मिलेंगी। आपके आत्मा के जो 7 निजी गुण हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति की शक्ति क्या है, उसकी अनुभूतियां क्या हैं, किस प्रकार इसके वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं और इससे क्या क्या सेवाएं हो सकती हैं, ये चिंतन पहले दिन का और उस स्वरूप की अनुभूति। शांति में भी बाबा कहते हैं आजकल डेड साइलेंस नहीं, डेड साइलेंस माना संकल्पों को शांत करके नहीं बैठो, स्वीट साइलेंस, बहुत मीठे मधुर संकल्प शांति के, जिसमें हलचल नहीं है संकल्पों की, लेकिन बहुत शांत बाबा के याद के प्यार के शांत संकल्प, मीठे संकल्प। शांति धाम की भी स्मृति है। दूसरे दिन अपने प्रेम स्वरूप को इमर्ज करो, बाबा को प्रेम के सागर के रूप में, उससे मेरा कितना प्यार का संबंध है। तीसरे दिन अपने पवित्र स्वरूप को इमर्ज करो कि मैं आत्मा कितनी पवित्र हूं, बाबा ने जीवन में इस ब्राह्मण जीवन में भी मुझे कुमारी जीवन दी है, पवित्र जीवन दी है, कितनी श्रेष्ठ जीवन है, कितनी भाग्यशाली जीवन है, इस पवित्रता का कितना जीवन में महत्व है। इमर्ज कर लो अपने पवित्र स्वरूप को, मैं पवित्र देवी हूं। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, चिंतन करो, आनंद स्वरूप की अनुभूति, शक्ति स्वरूप की अनुभूति करो, ज्ञान स्वरूप की अनुभूति। अगर ये 7 गुण जो आत्मा के निजी हैं, आप 7 दिन के लिए एक एक गुण रोज अमृत वेले आंख खुलते ही चिंतन करके और उसका अभ्यास करो, आपका अमृत वेला इतना अच्छा हो जाएगा, आपको लगेगा सचमुच इस अमृत वेले को ने हमें अमर भव का वरदान दे दिया है। कभी भी ख्याल ही नहीं आएगा, कोई संस्कार अगर होगा भी पिछले जन्मों का, तो संस्कार ऐसे अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये योग की भी विधि हो जाएगी, स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने की भी विधि हो जाएगी, और बाबा से अगर सवेरे सवेरे उस स्वरूप में स्थित होकर, क्योंकि आप स्वरूप हैं तो वो सागर है, जिस स्वरूप की आप अनुभूति करो उसको उसी सागर के रूप में अपने आप पर अनुभव करो, तो सागर की अंदर में समा रही हूं। सागर में हलचल नहीं होती, ऊपर हलचल दिखाए लहरों की, अंदर क्या है, बहुत शांत है, बहुत कुछ है उसके अंदर, बहुत रतन है। तो हम सभी अगर अपने अमृत वेले को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या पर, अपने मनन चिंतन पर, सारे दिन के और खान पान पर, विशेष तो अगर शाम का समय भोजन बहुत हल्का होता है और दिन में भी थोड़ी कई बार रेस्ट मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम सभी थोड़ा सा संकल्पों को ज्ञान युक्त बनाते चलें तो सवेरे थकावट की अनुभूति नहीं होती। तो अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी के संकल्प अमृत वेले बहुत माया भिन्न भिन्न रूप से लाती है। कहेंगे अरे आज तो थके हुए हैं, आज तो रात को बहुत मच्छरों ने भी तंग कर दिया, ऐसे संकल्प आते हैं, चलो सो लेते ना तो दिन में नींद आएगी, मुरली के समय मजा नहीं आएगा, क्लास में नहीं आएगा। लेकिन अमृत वेले को जो बाबा ने महत्व दिया है कि बच्चे ये आदि काल का समय, एक बात बाबा कई बार कहते हैं मुरली में कि जितने घंटे लेट यहाँ उठोगे सत्युग में उतने जन्म लेट हो जाओगे। कई लोग ऐसे करते हैं ना कि भाई चलो 4 बजे 5 बजे उठे, 5 बजे 6 बजे उठे, तो बाबा कहता बच्चे सत्युग के जन्म भी तुम्हारे लेट होते जाएंगे। इसलिए हम तो सभी आदि काल वाली आत्माएं हैं, फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के 7 पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, इसलिए ब्रह्मा बाप और शिव बाबा, भाग्य विधाता और वरदाता, दोनों से अपनी वरदानों से झोली भर लें, उसके लिए अमृत वेले पर विशेष ध्यान मिस नहीं करना एक दिन भी। और अगर आलस्य आता हो तो विधि हमने आपको बताई कि आप अपनी डायरी से एक बात अच्छी पढ़ करके खूब अच्छे विचारों से, खुशी के संकल्प से, उमंग से, हंसते हंसते, जैसे कोई चीज मिलने जाते हैं ना किसी से, कोई अच्छे व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से कोई मिलने जाता है तो क्या होता, घबराता है क्या? हमारा तो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, साजन भी है, क्या नहीं है, सब संबंध उसके साथ हैं। तो जब सब संबंधी से हमारा मिलन है तो कितना प्यार का संबंध है, कैसे प्यार से उसे बातें करें। तो उमंग के अगर संकल्प होंगे तो ये आपका अमृत वेला बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, और ये शक्तिशाली अमृत वेला आपको जो होमवर्क मिलेगा, जो टीचर कहेंगी कि आज तुमको इस टॉपिक पर भाषण करना है, घबराने की बजाय आप अमृत वेले बाबा से कहना, बाबा ये आपके हवाले है, आप जो टचिंग करो मैं उसी पर बोलूंगी। आपको लगेगा कि बाबा अपने आप सब पॉइंट्स दे रहा है, और फिर आप थोड़ी तो मेहनत करो, अपनी डायरी पर उसको नोट करो, जो अच्छे विचार आते हो लिख लो, वो आपके सदा के लिए बन जाएंगे। बुद्धि आपकी अच्छे विचारों से अगर संपन्न है तो जो कहते हैं ना व्यर्थ संकल्प आ गए, इधर के संकल्प उधर के संकल्प, सब संकल्प अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये हमारा अपना अनुभव है। तो बाबा ने ज्ञान रत्नों से खेलने का चांस जब से दिया है, मैं तो सवेरे से उठ करके रात तक आज ये करना है, आज ये करना है। दादी जी भी नई नई बातें रोज देती हैं, आज योग की पॉइंट्स भेजनी है, आज सुमान की पॉइंट्स भेजनी है, आज ये करना है। तो चिंतन भी चलता है, बाबा टच भी करता है, और किसी भी टॉपिक पर अगर बहने हमारी कह देती चांस मिलता है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, कभी कभी छोड़ देता हूँ, कभी कभी नहीं, लेकिन चांस लेते लेते बाबा अपने आप सब योग्यताएं भर देता है। तो आप सबको बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिला है, इसलिए अमर भव का वरदान, अमृत वेले लेना बाबा से, और ब्रह्मा के समान अपनी सारे दिन की दिनचर्या के फाउंडेशन को मजबूत करना। ओम शांति।